नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।